खुशियों भरी दिलदानी हमारी देवी देवताओं से भी है जो प्यारी खुशियों भरी
हरी जिंदगानी हमारी ठीक है गेट सच ठीक है गेट या गड़बड़ है इस गीत में है ना सबकी जिंदगी खुशियों से भरी या समस्याओं भरी जिंदगानी हमारी शिकायतों भरी जिंदगानी हमारी शिकायतों भरी तो नहीं है ना कईयों की शिकायतों से बहुत भरी होती है लेकिन शिकायतों से हम समस्याओं का हल नहीं कर सकते। हमारे पास शक्ति है और अधिकार है अपने को बदलने का, दूसरों को नहीं, दूसरों को बाद में। आज की मुरली थी माया तुम तुम्हारे चारों ओर क्या कर रही है, तो माया पहरा दे रही है या ईश्वरीय शक्तियां पहरा दे रही हैं हमारा, बोलो कन्याएं बताएं कौन। माया कभी चोर पहरा देते हैं या कभी, ये तो ऐसे हो गए ना चोर पहरा दे रहा है सावधान, माया पहरा दे रही है उससे बचने के लिए देवी अभिमानी बनो। आज की मुरली में बार बार था अपना कल्याण चाहते हो तो देही अभिमानी बनो, इन सभी मायावी झंझटों से मुक्त होना चाहते हो तो ज्ञान और योग का बल चाहिए, दोनों बल, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। देही अभिमानी दो शब्द हैं, शरीरी होना और देही अभिमानी होना। देवता अशरीरी है या देही अभिमानी, फेरो पहले इधर से पूछेंगे, देवता अशरीरी हैं, 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 देवता अशरीरी हैं, देह से न्यारे होने का अभ्यास करते हैं देवता, करती थी आप जब देवी थी, नहीं देवता अशरीरी नहीं है पर आत्माभिमानी है। हम सब अशरीरी होते होते योग लगाते लगाते अंत तक आत्माभिमानी बन जाते हैं। आत्माभिमानी एक स्थिति है और अशरीरीपन उसका अभ्यास है। जैसे कोई बीमारी किसी को हो, दवाई खाना वो अभ्यास हो गया, ठीक होना वो स्थिति हो गई। तो देह से न्यारे होने के हमें भिन्न भिन्न अभ्यास करने चाहिए, योगयुक्त होने के भिन्न भिन्न तरह के अभ्यास करने चाहिए। बाबा ने योग युक्त होने की बहुत सारी विधियां भी बताई हैं। मनोरंजन रूप से योग अभ्यास करो, उसकी भी हम कुछ चर्चा करेंगे। और देही अभिमानी का विस्तृत स्वरूप क्या है, पहले सबसे पहली चीज जो देही अभिमानी होते हैं उनमें आत्मा के सातों गुण संपूर्ण रूप से जीवन में आ जाएंगे। इसे बाबा ने एक बहुत गहरी बात भी कही है, किसी ने सुनी हो आप में से, केवल अष्ट रत्न ही संपूर्ण आत्मविमानी बनते हैं अंत तक। बाकी सभी अलग अलग लेवल तक आत्मविमानी बनते हैं। तो आत्मविमानी का संपूर्ण अर्थ है दृष्टि भी आत्मिक हो जाए, भावनाएं भी श्रेष्ठ हो जाए, आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाए, यानी संपूर्ण पवित्रता में आ जाए, सातों गुण जो आत्मा के हैं वो जीवन में आ जाएं, ये इसका अर्थ है। दृष्टि भी आत्मिक हो जाए, ये बड़ा है ये छोटा है, ये धर्म का ये उस धर्म का, ये छोटी जाति का ये बड़ी जाति का, इससे परे कौन सभी, कौन सभी आत्माएं, बोलो बोलो। ज्ञान कभी कभी सुनती हो ना, सुनो कन्या, कभी कभी ज्ञान सुनती है, अब अच्छा ज्ञान लेकर जाओ इसको। आत्मा का पहला गुण ज्ञान स्वरूप, बोलो। दूसरा, अब ये इनको बोलना, दूसरा बोलो बोलो, सीखोगे सीखो। दूसरा प्रेम स्वरूप, तीसरा नहीं आनंद सबसे आखिर में, श्याम स्वरूप, चौथा सुख स्वरूप, पांचवा शक्ति स्वरूप, छठा पवित्र स्वरूप और सातवा आनंद स्वरूप। आनंद सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, सुख खुशी नशा इन सब से बहुत ऊपर है आनंद, जिसमें आत्मा परम आनंद में बहुत अतिंद्रिय सुखों में स्थित हो जाती है। वो हर एक को उसका अनुभव नहीं होता। आनंद परम आनंद इसको इसलिए कहा गया, जब आत्मा परम पिता के साथ लंबा काल स्थित हो जाती है, वो परम आनंद की स्थिति होती है। तो हम इस तरह पहले इस पर चिंतन करेंगे, सभी को आत्मविमानी होने के लिए चिंतन करना है। आत्मा है ज्ञान स्वरूप, इसका अर्थ हमें ज्ञान मिल गया। देखिए संसार में बहुत लोगों के पास ज्ञान नहीं है, अंधकार है, उन्हें पता नहीं कि विकार बुरे हैं, उन्हें पता नहीं क्रोध को कैसे जीता जाए, उन्हें पता नहीं तनाव से मुक्त कैसे हुआ जाए, उन्हें पता नहीं कहाँ से आए थे और कहाँ जाएंगे, पुण्य कर्म क्या है पाप क्या है ये भी उन्हें पता नहीं, या है लोगों को है पता, उन्हें ये भी नहीं पता पाप क्या है, पाप कर रहे हैं और कहते हैं हम पाप नहीं करते हैं, पाप से तो भगवान बचाए, रोज मुर्गे खा जाते हैं, पाप से भगवान बचाए। एक आया था हमारे पास, मैंने उसे पूछा भाई पुण्य कर्म करते हो, फ्रेंडली बात हो रही थी, पाप तो नहीं होते, हाथ जोड़े, पाप से तो भगवान बचाए। मैंने पूछा वेजिटेरियन हो, नॉन वेज भी चलता है, ये नॉन वेज भी चलता है। मैंने पूछा फिर कितने मुर्गों की गर्दन तोड़ी है अब तक, कहा हमने थोड़ा ही तोड़ी है, तो दूसरों ने तोड़ी होगी, पर खाई तो तुमने तब तो तोड़ी, ये पाप नहीं हुआ, उन्हें पता ही नहीं ये भी पाप है, पर सभी खा रहे हैं हम भी खा रहे हैं, इसमें पाप कहाँ हुआ। तो लोगों के पास है अज्ञान का अंधकार और हमें है सत्य ज्ञान का प्रकाश, तो हम भटकते नहीं हैं, हम विचलित नहीं होते, हम अपने को और बाबा को पूरी तरह जान गए हैं, स्थिरता आ गई, इसी का परिणाम हुआ जीवन में सुख और शांति आ गई। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात आत्मा अपने को प्रकाश में महसूस करे, अंधकार में नहीं, हमें कुछ खोज नहीं, क्योंकि संपूर्ण सत्य मिल गया है। सब माताओं के पास सच्चा ज्ञान है या नहीं है, हाँ ना, हाँ ना में भी ऐसे, हाँ में भी ऐसे, आंध्र वाले ऐसे करते हैं, ना भी ऐसे हाँ भी ऐसे, ऐसे नहीं। सत्य ज्ञान मिला माताओं को, कहाँ से आई है आत्मा पता है सबको, तुम्हें पता, किसे नहीं पता। परम धाम से अयोध्या जाएंगे कहाँ? देखो यहाँ सबको पता है, बिना पढ़ी लिखी माताओं को पता है, और बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए बड़े बड़े विद्वान, चारों वेद छह दर्शनों का अध्ययन करने वाले अभी ढूंढ रहेंगे आए कहाँ से थे, रास्ता ही नहीं पता, जाएंगे कहाँ। तो सत्य ज्ञान का प्रकाश मिल गया तो आत्मा शांत हो गई। पहली संतुष्टि हम सबको ज्ञान मिलने के बाद हुई, इसका बहुतों को पता नहीं है पर हुई है सबको। सत्य ज्ञान मिल गया तो एक खोज पूरी हो गई, चित्त शांत हो गया। आत्मा सुख स्वरूप है, हमें चेक करना है हम सदा सुखी हैं या आत्मा दुख स्वरूप भी रहती है। बहुतों की आत्मा दुख स्वरूप भी है, तो हमें अपने को पढ़ाना है मेरा तो मूल स्वभाव ही सुखी रहना है, किसी भी बात से मैं आत्मा दुखी नहीं हो सकती। ट्रेनिंग दे अपने को, मुझे ईश्वरीय सुखों से, मुरली के सुख से, परमात्म मिलन के सुख से, उसकी दूरी हान के सुख से खुद को भरना है। चिंतन में लाएंगे आत्मा के सातों गुणों को। ये नहीं बस कह दिया मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, पूरा हो गया। कहने से कुछ नहीं होता, स्वीकार करें। ध्यान दें शब्द पर सभी। अगर हम सोच रहे हैं मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ तो स्वीकार करें, सुख है मेरे पास, मेरा मूल स्वरूप सुख है, मैं दुखी हो नहीं सकती। कोई दुख देने की कोशिश करे, मेरे पास किसी के शब्द, किसी का गलत व्यवहार, किसी का और कुछ उल्टा सुलटा मुझे दुख स्वरूप नहीं बना सकता। चिंतन करेंगे। तीसरा, आत्मा प्रेम स्वरूप है, किसी भी सीक्वेंस में ले ले, आत्मा प्रेम स्वरूप है, स्वीकार कर ले प्रेम मेरा स्वरूप है, मुझे किसी के प्रति घृणा नफरत हो नहीं सकती। प्रेम, मुझे सबको प्यार ही बांटना है, यही तो अर्थ होगा ना प्रेम स्वरूप का। जिसके पास जो होगा वही दूसरों को जाएगा। हम प्रेम स्वरूप नहीं हैं तो कहीं क्रोध स्वरूप, कहीं घृणा स्वरूप, लेकिन ये हमारा स्वरूप नहीं है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, सृष्टि का कितना सुंदर रहस्य बताया हुआ है, जो जितने देह से न्यारे, आगे बोलो, वो उतने ही विश्व के भी प्यारे और भगवान के भी प्यारे। भगवान का प्यारा होना बड़ा खराब माना जाता है दुनिया में, मृत्यु को भी कहते हैं तो भगवान को प्यारा हो गया, तो खुश होना चाहिए ना। मृत्यु के लिए ये भी एक शब्द है, भगवान के प्यारे हो गए। किसी ने मुझे कहा मेरे बाप भगवान को प्यारे हो गए, पहले तो मैं सोचा नहीं, तो मुझे ख्याल में आया कि मृत्यु हो गई है। आत्मा शांत स्वरूप है, क्रोध स्वरूप नहीं। एक एक चीज को लो और स्वीकार कराओ स्वयं को, सबकॉन्शियस माइंड में भर दो, हे आत्मा तू शांत स्वरूप है, शांत रहना तुम्हारी नेचर है, शांति तुम्हारी बहुत बड़ी शक्ति है, तुम शांत हो, तुम्हारा चित्त शांत है, मन शांत है, बुद्धि शांत है। ट्रेनिंग देनी है, किसी की भी कोई बात तुम्हें अशांति नहीं कर सकती। कभी जरा भी अशांति आए तो अपने को ट्रेनिंग दे, मेरा स्वरूप तो शांत है, मैं अशांत नहीं हो सकती। बहुत बल मिल जाएगा। ऐसे आत्मा के हर गुण पर चिंतन करेंगे, उसे स्वीकार करेंगे। हे आत्मा, तू शक्ति स्वरूप है। शक्ति स्वरूप का अर्थ है बहुत शक्तिशाली है, सर्वशक्तिवान की संतान क्या है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तू भयभीत नहीं हो सकती। अपने को ट्रेनिंग देंगे, तू निर्बल नहीं हो सकती। तू ये नहीं कह सकती समस्या को हल करने की शक्ति मेरे पास नहीं है। सच्ची बात तुम्हारी स्थिति को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, तू शक्तिशाली है। ट्रेनिंग दो, स्वीकार करो। समझ रहे हैं ना, कल सवेरे करना सभी। स्वीकार करे, एक एक गुण लेना, अपने को याद दिलाना, ये मेरा है, मेरा। इसके विरुद्ध जो चीज है वो मेरी नहीं है। आत्मा पवित्र स्वरूप है। और बाबा ने हम सबको इससे बड़ा टाइटल दे दिया, तुम परम पवित्र हो। लोग आज तक भगवान को केवल भगवान को परम पवित्र मानते हैं। उसने हमें याद दिलाया, तुम इष्ट देव देवियां भी परम पवित्र हो। तो विकार हमारे हैं ही नहीं, हमारा स्वभाव हमारा संस्कार तो पवित्र है, पवित्रता है। ट्रेनिंग देंगे, कोई विकार, पांचों विकारों में से सब। आजकल एक विकार का और बहुत फोर्स चल रहा है संसार में, मालूम है कौन सा है? लोभ। भ्रष्टाचार किसकी देन है? लोभ की। कई बाबा के बच्चे भी फंसते हैं लोभ में। कल ही मुझे एक फोन आ रहा है किसी भाई का, उसने लोभ से, कमाई का लोभ किसी को 50 लाख तक दे दिए, अपनी पत्नी के जेवर बेच के भी दे दिया, अपना घर गिरवी रख के भी दे दिया, थोड़ा लैंड पड़ा था वो भी बेच के दे दिया, और था सब धोखा। लेने वाला ले गया, फोन भी नहीं उठाता। बात करे तो लड़ने को तैयार, दे दूंगा मैं दुनिया छोड़ के थोड़ा ही जा रहा हूँ, दे दूंगा। गए उसके 50 लाख, लोभ हुआ, सोचा था 50 लाख के 50 करोड़ आ जाएंगे, मौज से रहेंगे। लेकिन सारी मौज नष्ट हो गई। अब सुसाइड करने के अलावा उसके पास कोई तरीका नहीं। कल मुझे फोन कर रहा था, मैंने कहा तुम मर जाओगे तो भगवान से जो कुछ लेना वो भी गया। पुलिस आदि कुछ करती नहीं, क्योंकि वो उन्हें भी दे देते हैं 50 लाख में से एक तुम्हारे, बस पुलिस उनकी, और पुलिस को क्या चाहिए। तो लोभ से बचना है। तो मैं पवित्र स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, इस गुड फीलिंग में चलना। आज रात को सोने से पहले करना, लेट कर ही बेड पर 5 मिनट करना, और सवेरे उठते इसका अभ्यास करना, एक एक गुण अपने को स्वीकार कराना, और उसके विपरीत जो बातें हैं उनको रिजेक्ट करना। मैं शांत स्वरूप हूँ, क्रोध स्वरूप नहीं, क्रोध मेरा संस्कार नहीं, जाओ विदाई। ये ट्रेनिंग अपने को देते देते ये चीज जीवन में आने लगेगी। अब हमें चाहिए ज्ञान और योग का बल। देही अभिमानी में मैंने दो चीज और कही सबको, आत्मिक दृष्टि, संभाव। आत्मिक दृष्टि से आता है संभाव, बड़े छोटे ऊंच नीच धर्म ये सब नहीं, सब आत्माएं। और दूसरा आत्माभिमाना, आत्माभिमानी माना सबके लिए श्रेष्ठ भावनाएं। क्यों श्रेष्ठ भावना रखने का प्रश्न उठता है? क्योंकि ये भावनाएं रहती नहीं। हम देखते हैं दूसरों को, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो भावनाएं बिगड़ जाती हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक, सभी आत्माएं हैं, हमें सबको सुभावनाएं देनी है। जो आत्माभिमानी होंगे उनसे निरंतर दूसरों को दो चीजें मिलेंगी तो सातों, पर प्रेम भी मिलता रहेगा ऑटोमेटिकली, पवित्र वाइब्रेशंस मिलते रहेंगे, श्रेष्ठ भावनाएं भी मिलती रहेंगी। ये तीन चीजें तो फीलिंग में होंगी, लेकिन जो जिसके पास ज्यादा होगा, किसी से शांति के वाइब्रेशन दूसरों को मिलेंगे, किसी के साथ आने से ही उन्हें सुख मिलने लगेगा। तो इसके लिए हमें भिन्न भिन्न योग के अभ्यास करने हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे दीदीपन के अभ्यास लिखा देता हूँ, जो डायरी पेन लिए हुए वो लिख लें, बाकी याद कर लें, और आज से ही इनका अभ्यास चालू करेंगे। पहला अभ्यास जो सबसे सुंदर बाबा सिखाते आए, मैं आत्मा इस देह में अवतरित हुई हूँ। बाबा साकार से ये बात सुनाते थे, जैसे मैं ब्रह्मा चेतन में आता हूँ, आया हूँ, वैसे तुम भी फील करो मैं भी परम धाम से इस तन में आई हूँ। पाठ बजाने, बहुत गुड फीलिंग होने लगेगी, न्यारेपन की अनुभूति होने लगेगी। दूसरा, मैं आत्मा प्रकृति सिंहासन पर, ये देह अलग, बिल्कुल न्यारेपन की फीलिंग करनी, जैसे मैं ड्राइवर, ये गाड़ी, मैं मालिक, मुझे इसे चलाना है, सुन रहे हैं तो कानों से सुन रहे हैं, ये फीलिंग। तीसरी, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, मन बुद्धि की मालिक, इस देह की मालिक, ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। चौथी प्रैक्टिस करेंगे, आत्मा के स्वरूप को देखना, बिल्कुल चमकती हुई मणि, बहुत तेजस्वी मणि, भ्रकुटि के बीच स्थित हूँ, ये मैं हूँ, मुझे चारों रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। ये बहुत सुंदर अभ्यास है, थोड़ा थोड़ा भी करने से मन आनंद की फीलिंग में आ जाता है, एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाती है। देह अभिमानी बनने का एक बहुत प्रैक्टिकल फायदा अनुभव होगा, व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति, आत्माभिमानी स्थिति की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस पांचवी, इसको निराकारी प्रैक्टिस कहेंगे, ऐसा फिर करें हम जैसे देह है ही नहीं, केवल मैं चमकती मणि, देहलोक प्रकृति के पांचों तत्व तत्वों में मिल गए, केवल मैं निराकार आत्मा। दो प्रैक्टिस और, अब इसी से चलेंगे, मैं निराकार आत्मा परम धाम में, अपनी मुक्त अवस्था में, बिल्कुल मुक्त अवस्था, संपूर्ण अवस्था, और ऐसा महसूस करेंगे कि शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी। जैसे हम ठंडे बर्फ के पास बैठ जाएं तो ठंड आ जाएगी ना थोड़ी देर में, तो परम धाम शांति धाम है, तो जैसे उसकी शांति मुझ आत्मा में समाने लगी, बहुत अच्छी फीलिंग होगी। डीप साइलेंस में चले जाएंगे और सातवीं प्रैक्टिस करेंगे, मैं फरिश्ता हूँ, आत्मा चमकती हुई और देह लाइट का, जैसे ये स्थूल शरीर है वैसे ही लाइट का शरीर, और उसमें चमकती हुई ज्योति, अलग अलग रंग दे दें, सफेद शरीर लाइट का और चमकती हुई रंग बिरंगी किरणें फैलाती हुई आत्मा। ऐसे ही योग के दिन दिन अभ्यास करेंगे, पावरफुल योग आठवल्ली में था, जन्म जन्म के विचरण विनाश करने हैं, राजा ही पानी है, तो योग बहुत पावरफुल होना चाहिए। इससे भी पहले इस पावरफुल योग से एक बहुत अच्छा अनुभव होगा, यहाँ के कर्म बंधन खत्म होने लगेंगे। कर्म बंधन खत्म, जो संबंधियों के बंधन पड़ते हैं पुरुषार्थ में, हम बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पर कोई एक दो आत्मा हमें कुछ नहीं करने देती, उससे हम अपने को मुक्त पाएंगे। मुझे एक बात और कहनी है, कभी कभी अपनी स्थिति बिगड़ने का दोष मनुष्य दूसरों पे रखता है। आप एक उदाहरण लें, एक स्त्री पुरुष है, पुरुष जो है उसका अपने माँ बाप से बहुत प्यार है, पत्नी से कम प्यार है, उसका बच्चों से भी कम प्यार है, माँ बाप की ओर ज्यादा झुकाव है। अब पत्नी को क्या फील होता है, ये मेरा है ही नहीं, वो डिस्टर्ब होती रहती है, इसका बच्चों से प्यार नहीं, इसका माँ बाप से ही प्यार है। अब वो माँ बाप के लिए कुछ उल्टा सुलटा करेगी जरूर, टूटे इसका उधर से प्यार, हमसे प्यार हो जाए। अब इस कारण से अनेक झंझट संबंधों में पैदा हो रहे हैं संसार में। फिर वो कुछ भी गलत करते हैं उनको, या तो वो उनसे बुरा व्यवहार करेगी, बहुत एकदम मुंह चढ़ाए रखेगी, और उसको लगता है ये मेरा पति ये कैसा व्यक्ति है, मेरी बात नहीं सुनता, मुझे सम्मान नहीं देता है। ये बहुतों के साथ हो रहा है, हो सकता है आप में से भी किसी के साथ हुआ हो। क्या इसी में स्थिति को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, माताएं बताएगी, बनाया जा सकता है, या पति ठीक हो तब हमारी स्थिति अच्छी होगी? बोलो माताएं जवाब दो, बुजुर्ग माताएं दे दो, अच्छा अच्छा छोटे हैं वो लज्जा कर रहे हैं जरा, बुजुर्ग माताएं बता दो। पति ज्ञान में नहीं है, प्रैक्टिकल केस है कईयों के, पति ज्ञान में नहीं है, बहन जी ज्ञान में है, पर वो चाहती है पति बदले, मैं बदलूं ये नहीं। उसका जीवन शिकायतों से भरा हुआ है, वो ऐसे करता है ऐसे करता है ऐसे करता है, मेरी बात काटता है, मुझे बिल्कुल सम्मान नहीं देता, मैं कुछ कहूँ तो उसका उल्टा ही करता है। कौन किसको बदल सकता है, स्वयं को। जब ज्ञानी स्वयं को नहीं बदल रहे, तो जो ज्ञानी नहीं है उनसे ये कामना रखना कि वो बदल जाए, तो जिंदगी भर इंतजार ही करनी पड़ेगी या नहीं, इंतजार करते रहो वो बदले तब हमारी स्थिति महान बने, और वो बदलेंगे नहीं संगम युग पूरा हो जाएगा, आएगा मजा। इसलिए क्या करना है, अरे स्वमान में रहो, सम्मान परछाई की तरह पीछे आएगा, भगवान मान दे रहा है, मनुष्यों के मान की इच्छा छोड़ दो, मान पीछे पीछे आ जाएगा। जरा इच्छा छोड़ कर तो देखो, मान की कामना छोड़ो, मान पीछे पीछे आ जाएगा। स्वमान में स्थित हो जाओ, परछाई की तरह सम्मान चलेगा पीछे पीछे। ये भूल जाते हैं, ये व्यक्ति मुझे सम्मान दे, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, ये किसने कहा, किसने कहा, स्वयं भगवान ने। और मनुष्य क्या कहते हैं, तुम बदलो फिर हम बदलेंगे। कितना अंतर हो गया मनुष्य मत और प्रभु मत में। भगवान कह रहा तुम महान आत्माएं हो, इष्ट देव देविया पूर्वज हो, तुम बदल जाओ, संसार की आत्माओं को बदलने की प्रेरणा मिलेगी। और कुछ लोग सोच रहे ये बदल जाए तो हम बदलेंगे, तो कभी नहीं होगा, बदलने की इंतजार ही करते रहेंगे। इससे अपने को बाहर निकाल देना है, पुरुषार्थ श्रेष्ठ करेंगे, याद रखना है, स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, और स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी स्वमान से। जो परिस्थितियों को बदलने की इंतजार करते हैं वो स्वस्थिति को कभी श्रेष्ठ नहीं बना पाते। परिस्थिति कभी नहीं बदलेंगी, बदलना हमें है। सत्य तो ये है कि जब हम पावरफुल हो जाते हैं तो ये परिस्थिति हमें साधारण लगने लगती है, तो कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति कुछ इंसल्टिंग बोल रहा था, स्थिति अपनी ढीली है तो फीलिंग आती है, खुशी नष्ट हो जाती है, योग नहीं लगता, डिस्टर्बेंस, कहेंगे देखा यहाँ भी यही होता है और स्थिति पावरफुल है। दूसरे ने कुछ भी खराब बोला, मुस्कुरा के आगे चल दिए, खत्म हुई बात, नो इफेक्ट। ये भी तो होगा ना। तो हमें अपनी स्थिति पर ध्यान देना है पावरफुल योग के लिए। मैं आपको आज केवल दो अभ्यास बताता हूँ, अभ्यास तो 7-10 भी हो सकते हैं, पर दो पहले ध्यान देंगे पावरफुल योग के लिए। ज्वाला स्वरूप योग, अपने सामने ज्ञान सूर्य को देखेंगे, बिल्कुल सामने, उसकी रंग बिरंगी किरणें सामने से मुझ पर पड़ रही हैं। ये अभ्यास 10 सेकंड करेंगे, फिर परम धाम में सर्वशक्तिवान को देखेंगे, बुद्धि उस पर स्थिर कर रहे, कोई उसका एक गुण याद करेंगे, सर्वशक्तिवान, पवित्रता के सागर, शांति के सागर, कोई एक गुण ले ले और उस पर बुद्धि स्थिर करें 10 सेकंड, फिर नीचे ले आए ज्ञान सूर्य पर 10 सेकंड, फिर ऊपर ले चलें सर्वशक्तिवान पर 10 सेकंड, ये ड्रिल कर दो। अगर कोई 10 बार ये ड्रिल कर ले उसके बाद योग देखो कितना सुंदर लगता है। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इसमें। ऐसे जब भी योग में बैठे, शाम को भी सवेरे भी, ये दो अभ्यास विशेष रूप से करने हैं सभी को। योग अभ्यास का एक बहुत सरल तरीका और मैं आपके सामने रख देता हूँ। मधुबन में ही बहुत साल पहले बाबा ने एक प्रैक्टिस सिखाई थी संदेश के माध्यम से, संदेशी बहन के द्वारा, रूहानी ड्रिल करो। और वो ड्रिल इस तरह बताई थी, मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर में हूँ, पहले देह में हूँ, देह के अंदर सूक्ष्म शरीर है, मैं आत्मा इसमें बैठी हूँ, कुछ देर इसमें स्थित हो जाए, मैं कहूँगा 10-10 सेकंड, फिर अभ्यास करें मैं आत्मा इस सूक्ष्म शरीर सहित निकल कर बाहर चलती हूँ ऊपर की ओर, पहुँच गए सूक्ष्म लोक में बाप दादा के सामने। बाप दादा को सामने देखो, बाबा के मस्तक में चमकती हुई ज्योति, बाबा ने हाथ सिर पर रख दिया, बाबा के नैनों से किरणें निकल रही हैं, बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं, कुछ समय यहाँ बिताओ, बाबा से रूढ़ी हम कर ले, बाबा को थैंक्स दे दे। फिर यहाँ से मैं आत्मा बनकर चली परम धाम, अब मैं परम धाम में हूँ बाबा के साथ, कुछ देर वहाँ रहेंगे, फिर मैं आत्मा वापिस आती हूँ सूक्ष्म लोक में, फिर बाप दादा के समक्ष, बहुत सुंदर फरिश्ता स्वरूप, सूक्ष्म वतन का नजारा अपने सामने लाएंगे, चारों ओर सफेद प्रकाश है, फरिश्तों की दुनिया है। कुछ देर वहाँ बिताकर फिर मैं फरिश्ता नीचे उतरता हूँ, इस देह में समा गया हूँ, फिर मैं आत्मा हूँ यहाँ। ये ड्रिल हुई एक बार, 5 बार ऐसा कर ले। योग से पहले यदि ये दोनों ड्रिल कर ली जाए, दोनों योग है, दोनों ड्रिल की जाए तो बाकी योग भी बहुत पावरफुल हो जाएगा। देखिए मन की एक स्थिति पर सभी ध्यान दें, मन को भटकने की आदत पड़ गई है ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। अगर हम इसको संकल्प दे दें, अब यहाँ से ऊपर चलो, ऊपर से और ऊपर चलो, तो इसका इसकी इच्छा पूरी हो जाएगी ना। उधर उसकी आदत थी भटकने की, हमने उसको तीनों लोक में भेज दिया, भटकना इसको नहीं कहेंगे, तीनों लोकों में स्थित कराया तो उसकी भटकने की आदत छूट जाएगी। हमें काम देना पड़ेगा अपने मन को, ये योग की ड्रिल के अभ्यास करेंगे, ज्ञान और योग का बल चाहिए हमें बहुत। थोड़े से योग से काम नहीं चलेगा। जिसको इस जीवन का सुख लेना है, 4 घंटे योग की प्लानिंग करे, कुछ बैठ कर, कुछ कर्म में। अच्छा हो कि कर्म करते कुछ अच्छी प्रैक्टिस करने की आदत पड़ जाए, तो इजी हो जाएगा सब कुछ। बैठ के भी करना है एकाग्रता बढ़ाने के लिए, और कर्म में भी लाना है। कर्म में बहुत अच्छी फीलिंग रख सकते हैं। सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है। और कुछ ना हो तो बाबा 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है। मैं अपना हूँ, इस शरीर से काम करा रही हूँ, आँखों से देख रही हूँ। ऐसी कुछ छोटी प्रैक्टिस, कभी स्वमान की प्रैक्टिस चलती रहे। हमारा अटेंशन हो जाए कि सारा दिन हमें इन अलौकिक अभ्यासों में दिन बिताना है, तो क्या फायदा होगा? समय और संकल्प बहुत बच जाएंगे। मैं बाबा की एक मुरली पढ़ी, उसमें समय और संकल्प की बात थी, कुछ साल पहले की थी, आजकल तो बाबा बहुत कहते हैं। उसमें बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त बनो और चमत्कार देखो। हम लक्ष्य बना ले कि जब इस जीवन में हम आ गए हैं बाबा के पास, हैं सबने बहुत बड़ा त्याग कर दिया। कुमार बैठे हैं, बहुत सारे हाथ उठाना, सारे आगे तो कुमार ही बैठे क्लास में, सारे ही कुमार। कुमारों का बहुत बड़ा त्याग है, कन्याओं का भी। तो त्याग करने के बाद चिंतन करो सभी, है मेरे साथ साथ चिंतन करना। त्याग करने के बाद अगर कुछ बड़ी प्राप्ति न की तो त्याग निष्फल जाएगा, और तब बहुत पश्चाताप होगा। न हमने दुनिया का सुख लिया, न इधर सब कुछ पाया। इसलिए सभी कुमार विशेष रूप से चिंतन करें। आप सेवा में आए हैं, त्याग कर दिया, देखो सेवा में आए हैं, समय निकाला है आपने, ये बाबा के लिए प्यार है ना बहुत। नहीं तो आप क्यों अपना काम धंधा नौकरी छोड़ के यहाँ पे। इस प्यार का रिटर्न बाबा बहुत देता है, और इस प्यार में हम अपनी स्थिति को महान बनाएं। ये सभी लक्ष्य रख ले। माताओं ने बहुत त्याग किया है, कईयों ने सहन बहुत किया है, गालियां खाई है। त्याग निष्फल न जाए। त्याग करने के बाद यदि श्रेष्ठ स्थिति नहीं बनती तो डिप्रेशन होता है, उदासी आती है जीवन में। तो हमें चाहिए ज्ञान का बल, और ज्ञान का बल मिलेगा ज्ञान के चिंतन से। ठीक बात है ना? बाबा उदाहरण देते हैं कि जैसे तुम भोजन खाते हो, अच्छी तरह चबाते हो, पेट में जाता है, अनेक रस बनते हैं, ब्लड बनता है, खून बन जाता है, ताकत हो गई ना, फिर और सूक्ष्म चीजें बन जाती हैं, एनर्जी आ जाती है बॉडी में। कोई भोजन ही ना खाए तो ये सब चीजें बनेंगी नहीं, देह निर्बल होता जाएगा। भोजन हजम हुआ, शक्ति बन गई। ज्ञान हजम होगा, शक्ति बनेगी, और हजम कैसे होगा? मनन से। तो ज्ञान का सूक्ष्म यानी सार रूप आत्मा में समा जाएगा। जैसे रोज हम सवेरे मुरली सुनते हैं, सारी मुरली तो याद रहेगी भी नहीं, कल दूसरी आ जाएगी तो आज की भूल जाएगी। उसका सार रूप आत्मा में समा जाए, उसके लिए मुरली के बाद ही थोड़ा सा चिंतन हो जाए। इतना ही करें आप कि ओम शांति भवन से जब नाश्ते तक आए, 3 मिनट में ही मुरली की मुख्य बातों को याद कर लें। तुरंत याद करने से वो याद भी रहेंगी, और सार रूप में उनकी शक्ति मन में समाती जाएगी। बुद्धि में भी सार क्या होगा ज्ञान का? विवेक। तो बुद्धि में सद विवेक भी समाता जाएगा। इस पर सभी बहुत ध्यान देंगे और अगर हम ज्ञान का मनन करके शक्तिशाली स्वयं को बनाते हैं तो ज्ञान की पॉइंट समय पर हमें बहुत काम आएंगी। सबसे पहले माया जो पहरा दे रही है वो ज्ञान भुला देती है। बाबा कहा करते थे कि बुद्धि का कनेक्शन काटती है माया पहले। चोर भी आते हैं तो पहले क्या करते हैं, आजकल लाइट का और टेलीफोन का कनेक्शन काटेंगे। अब तो मोबाइल हो गए, लेकिन जब बड़े कांड होते हैं तो मोबाइल के भी सब कनेक्शन खत्म कर दिए जाते, लॉक कर दिए जाते हैं, सब मोबाइल चलेंगे नहीं। कहीं भी जब बम फट जाते हैं ना तो वहाँ आसपास बिल्कुल फोन चलेंगे ही नहीं, बंद कर दिए जाते हैं। तो माया भी यही काम करती है। तो हम सभी ज्ञान का बल भी स्वयं में भरेंगे और योग का बल भी बढ़ाएंगे। इसके बिना हम माया से मुक्त नहीं हो सकेंगे। आज ये भी था ना, बाबा तुम्हें पवित्र बनाते हैं और पवित्रता से क्या आ जाती है जीवन में, सुख शांति। संसार में लोगों को ये पता नहीं है कि उन्होंने सुख शांति क्यों खो दी है, टेंशन क्यों बढ़ रहा है, समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं, संबंधों में टकराव क्यों बढ़ रहा है। इन सब का एक ही बीज है, कौन सा है, पवित्रता। अगर पवित्रता को अपना लिया जाए तो तेजी से ये चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन कभी कभी जो ये देखा जाता है कि पवित्र बनने वाली आत्माएं भी इन सब में उलझी रहती हैं, उसका कारण ये होता है उन्होंने अपनी भावनाओं को शुद्ध नहीं किया, अपनी कामनाओं का त्याग नहीं किया, अपनी दृष्टि को अलौकिक नहीं बनाया, दूसरों से कामनाएं ज्यादा रखने लगे। जैसे मैंने एक चर्चा की थी, दूसरों को बदलने की इच्छा ज्यादा, अपने को बदलने की इच्छा बिल्कुल नहीं। तो पवित्र आत्माएं भी जब ऐसी होंगी तो उन्हें भी सुख शांति का अभाव हो जाएगा, उनके जीवन में भी बहुत टेंशन रहेगी, वो भी प्यासी नजरों से दूसरों की ओर देखेंगे। लास्ट बात यही, हमें प्यासी नजरों से दूसरों की ओर नहीं देखना है। कौन सी प्यासी नजरें? दूसरे हमारा सम्मान करें, दूसरे हमें अच्छे बोल बोले, दूसरे प्यार की दृष्टि से हमें देखें। ये भी मांग है या नहीं? बेगिंग, बेगर बन गए हम। हम दाता हैं। इस मांग को हम खत्म करें, अपने विचारों को शुद्ध करेंगे, ज्ञान योग का बल बढ़ाएंगे। ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।